जसवंत फिर से सूट कर पाता, उससे पहले ही उसके सीने पर एक गोली जाकर लगी, जो दूर से अमर ने चलाई थी। अमर की आंखें गुस्से में लाल थीं। वो एक झटके से अपनी गाड़ी से उतरा। उसकी दोनों हाथों में बंदूकें थीं। वो बिना उन इंसानों की शक्ल देखे एक एक इंसान पर गोली चला रहा था। थोड़ी देर बाद वहां दीक्षांत और पुलिस भी आ चुके थे। एक ही झटके में जसवंत और संयम दोनों ने दम तोड़ दिया था, क्योंकि अमर ने एक बुलेट नहीं बल्कि जितनी उसकी गन में मौजूद थी वे सारी गोलियों से उन दोनों को भून डाला था। और वो लगभग दौड़ते हुए उसके बाद जानवी के पास गया। जानवी तो अभी तक भी अपने सामने पड़े अद्वैत को देख रही थी, जो दर्द से तड़प रहा था और उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था।
महबूबा,
उसकी तड़पती आवाज़ सुनकर अमर ने उसे एक नज़र देखा और फिर चिल्लाते हुए दीक्षांत को वहां बुलाया ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके। सारी पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद थी, अब लाशों को ही उठा रही थी, क्योंकि इंसानों को तो वो बचा नहीं पाई थी। वहीं अमर ने जैसे ही जानवी के रोते हुए चेहरे को देखा, उसके अंदर जैसे गुस्से का ज्वालामुखी जल उठा। वो वापस मुड़ा और जसवंत के पास गया। अगले ही पल वो घुटनों के बल बैठते हुए जसवंत की कॉलर पकड़ के उसके मुंह पर मुक्के जड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को हाथ लगाने की, उसे पर गन तानने की? मैं तुम्हारी एक एक हड्डियां तोड़ डालूंगा। दीक्षांत ने पहले एम्बुलेंस में अद्वैत को अस्पताल भेजा और फिर जल्दी से अमर के पास गया, जो एक मरे हुए इंसान को पागलों की तरह मार रहा था। दीक्षांत ने अमर को कंधों से पकड़ते हुए कहा, अमर, वो मर चुका है, प्लीज संभल खुद को, भाभी जान को तेरी जरूरत है। कि सुनकर जैसे अमर होश में आया हो, उसने एक झटके से जसवंत को छोड़ा और वापस जानवी के पास गया। जानवी जो अब जाती हुई एम्बुलेंस की तरफ देख रही थी। अमर ने जल्दी से जानवी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, जान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? इतना बोलने के साथ ही अमर ने उसे खुद से अलग किया और अगले ही पल उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसके पूरे शरीर को गौर से देखने लगा। जब उसे तसल्ली हो गई कि जानवी को कुछ नहीं हुआ है, तब जाकर उसने एक सुकून की सांस ली और अगले ही पल आगे बढ़ते हुए जानवी का माथा चूम लिया, जिसके साथ ही जानवी की आंखें बंद हो गईं और दो बूंद आंसू उसकी आंखों के नीचे निकलकर उसके गालों पर आ गए। अगले ही पल जानवी ने सिसकते हुए अमर की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और रोते हुए बोली, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, मेरी वजह से एक इंसान आज मरने की कगार पर है। कोई इंसान किसी को देखने भर से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? अमर, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है। मैं उससे मोहब्बत भले ही ना करूं, पर उसकी मोहब्बत की इज्जत बहुत करती हूं। मैं कभी उस इंसान को भूल नहीं पाऊंगी जिसने मेरे लिए अपनी जान धोखे में डाली है। आई एम रियली सॉरी, पर मैं आपके दुश्मन से नफरत नहीं कर पाऊंगी। इस वक्त बस अमर को ही पता था कि वो कैसे अपनी जेलर को कंट्रोल कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से धीरे धीरे काला पड़ रहा था। उसने जानवी को अपनी बाहों में काश और उसके शरीर से आई फ्रेग्रेंस को इनहेल करते हुए आंखें बंद कर ली। हाँ, वो जानवी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था कि वो अद्वैत से नफरत ही करे, पर फिलहाल उसे ये अच्छा भी नहीं लग रहा था कि उसके होते हुए जानवी अद्वैत के बारे में बातें कर रही है। सब कुछ शांत होने के बाद दीक्षांत ने अपना गला सही करते हुए कहा, अमर, मुझे लगता है एक बार हम भाभी जान का भी अस्पताल में चेकअप करवा लेते हैं। ऊपर से घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं। मैंने वैसे समर्थ को इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों से जानवी को सही सलामत नहीं देखेंगे, उन्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। चलो मेरे साथ। अमर ने दीक्षांत की बातें बिल्कुल नहीं सुनी थी। उसके दिमाग में तो सिर्फ जानवी की आवाज़ गूंज रही थी, पर जानवी ने जरूर सुना था। उसने जल्दी से अमर का हाथ सहलाते हुए कहा, अमर, चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे लगता है गिरने की वजह से मेरी कमर में मोच आ गई है, मैं उठकर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। ये सुनकर अमर जल्दी से उससे अलग हो गया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, जिन्हें जानवी ने अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए अमर, खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, प्लीज रोना बंद करिए। अमर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद वे तीनों भी वहां से निकलकर अस्पताल जा रहे थे। वहीं अद्वैत का इलाज चल रहा था, उसका ऑपरेशन हो रहा था, पर वे दो गोलियां दिल में जाकर फिट हो चुकी थीं। इसका मतलब था कि अद्वैत नहीं बच पाएगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद 15 मिनट तक ICU को बंद रखा ताकि अद्वैत को होश आ पाए और वे लोग अद्वैत से उसकी आखिरी इच्छा पूछ पाए, क्योंकि वो महज 10 मिनट जिंदा रहने वाला था। और उन लोगों को पहले से पता था अद्वैत शेखर की जिंदगी में कोई नहीं है, वो एक अकेला इंसान है, बिल्कुल किसी जंगल में रहते शेर की तरह। इसके आगे पीछे जरूर कोई नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। थोड़ी देर बाद जानवी का चेकअप भी हो गया। जानवी बार बार अद्वैत से मिलने की जिद कर रही थी, जिससे अमर का गुस्सा बढ़ते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में अमर ने चलते हुए कहा, जान, क्या तुम बार बार उस इंसान का नाम लेना बंद करोगी? जैसे ही उसको होश आएगा हम दोनों साथ में उससे मिलने जाएंगे। अमर ने इतना बोलने के साथ ही गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। यहां वो जानवी की मासूमियत के आगे घुटने टेक रहा था, वरना अमर रावत कभी अपने दुश्मन का इलाज कर ले ये तो सपने में भी मुमकिन नहीं था। पर कहते हैं बड़े बड़े दिग्गजों को इश्क के आगे बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, फिर चाहे वो खुद का बदलता रवैया ही क्यों ना हो।